नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। और स्वागत करता हूँ द अनचार्टेड स्टोरीज ऑफ महाभारता के सीजन 2 में। दोस्तों, इससे पहले कि आज की कहानी शुरू करूँ, एक छोटी सी बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी हम महाभारत से रिलेटेड बातें करते हैं तो हमारी नॉलेज जो है वो कौरवों में या फिर पांडवों से रिलेटेड या फिर कृष्ण जी से रिलेटेड ही थोड़ी सीमित होती है। जबकि महाभारत में बहुत सारे ऐसे किरदार थे जिन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो हमारा आज का एपिसोड ऐसे ही एक किरदार पे डेडिकेटेड है जिनका नाम है धृष्टद्युम्न, द ट्विन फ्रॉम फायर। अब ये जो टाइटल है द ट्विन फ्रॉम फायर, इसके पीछे भी एक कहानी है जो मैं आपको आगे चल के सुनाऊंगा। लेकिन धृष्टद्युम्न कौन है, उनका रोल क्या था, तो इन सब चीज़ों को जानने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पांडवों या कौरवों से कैसे रिलेटेड थे। तो धृष्टद्युम्न जो हैं वो पांडवों के साले लगते हैं और वो द्रौपदी के जुड़वा भाई हैं। अब इसके अलावा धृष्टद्युम्न का जो रोल है वो महाभारत की लड़ाई में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो पांडवों की तरफ से उनके सेनापति थे, मतलब कमांडर इन चीफ थे। और कहते हैं कि वो बहुत बड़े वॉरियर थे, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे, क्योंकि जब भी पांडव कैंप में टॉप 5 वॉरियर्स का नाम लिया जाता था, 5 मेन योद्धाओं का अगर नाम लिया जाता था, तो उसमें एक धृष्टद्युम्न का भी नाम होता था। और महाभारत की लड़ाई में कई बार ऐसा इंस्टेंसेस आया है जहाँ पे कि ये कर्ण पे हावी हो चुके थे, कई बार 2 बार द्रोणाचार्य पे हावी हुए थे, तो इसीलिए इनको भी एक वन ऑफ द मेन कंटेंडर माना जाता था। तो ये तो धृष्टद्युम्न के बारे में एक हल्का सा आइडिया हो गया कि ये कौन थे, किससे रिलेटेड थे और इनका क्या महत्व था। अब आते हैं आज के टाइटल पे जो है द ट्विन फ्रॉम फायर। तो इस टाइटल के पीछे की कहानी के लिए मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि पांचाल देश के राजा हैं राजा द्रुपद, ठीक है। अब राजा द्रुपद और द्रोण ये दोनों बचपन के दोस्त हैं, एकदम जिगरी दोस्त। तो बचपन में दोनों साथ में खेलते थे। अब द्रुपद जो है वो राजा के बेटे हैं, धन दौलत नौकर चाकर फुल रईस। लेकिन द्रोण जो है वो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब ब्राह्मण घर से थे, तो उनके पास पैसे नहीं होते थे। लेकिन बचपन की दोस्ती होती है, मतलब बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे की केयर करते हैं। बचपन में लोग नादान भी होते हैं, बच्चे नादान होते हैं, तो अक्सर जब द्रुपद और द्रोण खेलते थे बचपन में, तो द्रुपद द्रोण से कहते थे कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, जब मैं राजा बन जाऊँगा ना, तब तुम्हें मैं अपना आधा राजपाट दे दूँगा। तो ये तो बचपन की बात है भाई, बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, दूसरों की तकलीफ देख नहीं सकते हैं। तो खैर धीरे 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 समय पार होता है, दोनों बड़े हो जाते हैं। तो इधर द्रुपद जो है वो राजा द्रुपद बन जाते हैं, लेकिन इधर जो द्रोण है वो बड़े होके टीचर बनते हैं, लेकिन बहुत ही गरीब, अभी भी गरीबी रहते हैं वो, लेकिन स्वाभिमानी टीचर रहते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि ये जो द्रोण है इनकी वाइफ गरीबी से इतना परेशान हो जाती है कि उनको बोलती है कि आपके जो मित्र हैं जो दोस्त हैं वो इतने बड़े राजा हैं, आप उनसे जाके मदद क्यों नहीं मांगते हो। तो काफ़ी सोचने के बाद द्रोण डिसाइड करते हैं कि ये क्यों ना जाके अपने पुराने मित्र से एक बार मिला जाए। तो वो पहुंच जाते हैं राजा द्रुपद के यहाँ, और द्रुपद को वो कहते हैं कि हम बचपन के मित्र हैं, क्या तुम्हें बचपन का ये वादा याद है कि तुमने कहा था कि जब तुम राजा बन जाओगे तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। अब ये सुन के जो राजा द्रुपद है वो हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि अरे वो तो बचपन की बात है, सब बचपने में कहा था, तो तुम्हारे ऐसे मांग लेने से ही मैं तुम्हें आधा राज्य थोड़ी दे दूंगा, तुम ब्राह्मण हो, तुम मेरे से दान मांगो, मैं तुम्हें दान दूंगा। अब हालांकि ये बातें तो सच है, बट फिर भी बहुत ही इंसल्टिंग है। तो अब ये सुन के इनको बहुत बुरा लगता है और ये गुस्से से जो द्रोण है वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। और वो फिर वापस आने के रास्ते में उनको फिर ये पांडव बच्चे दिखते हैं जिनको ये बाद में जाके इनके गुरु बनते हैं। तो इससे रिलेटेड एपिसोड मैंने एक सीजन 1 में किया है द्रोणाज रिवेंज करके। तो खैर ये कौरवों को और पांडवों को फिर ट्रेन करते हैं और जिन्हें बाद में हम द्रोणाचार्य के रूप में हम लोग जानते हैं। तो अब द्रोणाचार्य जो थे वो बहुत ही टैलेंटेड टीचर थे, मतलब उस टाइम पे उनसे अच्छा और कोई नहीं था। तो पांडवों और कौरवों की ट्रेनिंग खत्म होती है तो वो पूछते हैं कि अब आप गुरु दक्षिणा आपको क्या चाहिए, आप हमें बताएं, हम आपको गुरु दक्षिणा देंगे। तब द्रोणाचार्य क्या कहते हैं कि एक काम करो, तुम जाओ और पांचाल देश पे चढ़ाई करो और वहाँ के राजा जो हैं, राजा द्रुपद, उसको पकड़ के मेरे सामने ले आओ जिंदा। तो कौरव और पांडव ये लोग दोनों जाते हैं, पांचाल देश पे चढ़ाई कर देते हैं और फिर राजा द्रुपद को बंदी बना के लेके आ जाते हैं द्रोणाचार्य के सामने। अब जब इन्होंने चढ़ाई की थी उस टाइम पे जो वहाँ के सेनापति थे राजा, जो पांचाल देश है, तो वहाँ पे राजा का जो बेटा था उस टाइम पे, जिसका नाम है सत्यजीत, वो था सेनापति, लेकिन वो रोक नहीं पाया पांडव को कौरव को। तो खैर, तो अभी ये लोग बंदी बना के लेके आ जाता है द्रोणाचार्य के सामने राजा द्रुपद को। तब द्रोणाचार्य इनसे कहते हैं कि अब तो तुम्हारा सारा राज्य मेरा है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, जाओ मैं तुम्हें आधा राज्य देता हूँ और अब हम बराबरी पे हो चुके हैं। तो ये आधा राज्य दे देता है राजा द्रुपद को और उसको सही सलामत वापस भेज देता है। लेकिन ये इंसिडेंट जो है ये राजा द्रुपद को बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग लगता है, मतलब कोई भी होता तो लगता ही। तो अब उनके दिमाग में था कि अब बदला लेना है, किसी भी हालत में बदला लेना है। और वो इस गुस्से से कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो मेरे इस इंसल्ट का बदला ले, वो आके उस टाइम पे जितने भी बड़े ऋषि मुनि लोग रहते हैं, जितने भी पंडित लोग रहते हैं, उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे एक ऐसा यज्ञ करना है, पुत्र प्राप्ति यज्ञ करना है जिसमें कि मुझे एक योद्धा मिले। तो बहुत बड़ा यज्ञ ऑर्गेनाइज किया जाता है, सारे ऋषि मुनि आते हैं, पूजा पाठ हवन चलता है बहुत दिनों तक। तो लास्ट में जब यज्ञ खत्म हो जाता है तो ऋषि मुनि लोग प्रसाद लाते हैं और वो लोग कहते हैं कि ये रानी को देना है जिससे कि उनको योद्धा पैदा होगा। लेकिन उस टाइम पे जो रानी है, राजा द्रुपद की जो वाइफ है, वो कुछ खा रही थी या फिर कुछ ऐसा काम कर रही थी जिससे कि वो ऋषि मुनियों को कहती है कि आप थोड़ा वेट करें, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मतलब उनको आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब ऋषि मुनि उस टाइम पे थोड़ा सा मतलब वैसे थे कि यार मुझे कैसे बोल दिया रुकने के लिए, तो गुस्से में जो प्रसाद रानी को देना था वो आग में डाल देते हैं। अब जैसे ही ये आग में डालते हैं, आग से एक लड़का निकलता है जो बचपन वाला बच्चा नहीं होता है, वो एकदम से बड़ा योद्धा ही निकलता है, हाथ में आपका तीर धनुष और तलवार लेके। तो एक लड़का निकलता है और एक लड़की निकलती है। तो जो लड़की निकलती है उसको हम जानते हैं द्रौपदी के नाम से, और जो लड़का निकलता है उसको हम जानते हैं धृष्टद्युमन के नाम से। तो अब चूंकि दोनों एक साथ आग से जन्म लेके निकलते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि द ट्विन फ्रॉम फायर। तो ये है आज के टाइटल के पीछे की कहानी। अब चूंकि धृष्टद्युमन जो है वो आग से निकले थे, तो लोगों का मानना था कि वो अग्निदेव के एक आंशिक रूप भी हैं, मतलब उनमें एक अंश अग्निदेव का भी है। तो दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि धृष्टद्युमन कौन थे, उनका जन्म कैसे हुआ था, वो कैसे रिलेटेड थे कौरवों से या पांडवों से, तो मोटा मोटी आपको एक रफली एक आइडिया आ गया होगा कि अभी धृष्टद्युमन का प्रेजेंस कैसा था महाभारत में। अब आइए मैं थोड़ा सा इनके क्वालिटीज़ के बारे में आपको बताऊँ। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि बहुत बड़े शूरवीर थे और अकेले किसी से भी ये टकरा सकते थे, चाहे वो कर्ण हो, चाहे वो द्रोणाचार्य हो, चाहे दुर्योधन हो। तो इसके अलावा एक जो बहुत इनका स्पेशल क्वालिटी ये था कि महाभारत में चक्रव्यूह या फिर जो व्यूह, चक्रव्यूह एक टाइप था व्यूह का, तो वो जो व्यूह की जो रचना होती है और उसको चाहे भेदना हो, चाहे उसको बनाना, फॉर्मेशन जो होता है जिसको कि हम लोग मिलिट्री फॉर्मेशन भी कहते हैं, उस चीज़ का भी नॉलेज था इनको। और बहुत कम लोग थे जिनको व्यूह का रचने का और उसको भेदने का उन नॉलेज हुआ करता था, जैसे कि एक द्रोणाचार्य थे जो महारथ थे, एक उनका लड़का था अश्वत्थामा उनको था, अर्जुन थे, भीष्म पितामह थे, और एक धृष्टद्युमन भी थे जिनको कि ये व्यूह का नॉलेज था। तो बाकी क्वालिटीज़ में ये भी उनकी एक क्वालिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था जब वो पांडवों की तरफ से लड़े थे। अब शायद से आपको ये नहीं पता होगा कि जब महाभारत की लड़ाई शुरू हुई थी, जो पहला दिन था वो पांडवों के लिए बहुत ही ख़राब था। तो पहले दिन जो है, पहला दिन से ही ये कमांडर इन चीफ नहीं थे, सेनापति इनको दूसरे दिन बनाया गया था, वो भी कृष्ण जी के कहने पे। पहले दिन की जो लड़ाई थी उस दिन इनके कमांडर इन चीफ या सेनापति जो थे वो थे राजा विराट के छोटे बेटे श्वेत करके। राजा विराट के बारे में मैं एक और एपिसोड का भी अच्छे से बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं पांडवों की लाइफ से रिलेटेड। अभी इधर लड़ाई में आते हैं कि पहले दिन जो है वो जो श्वेत नाम के जो सेनापति हैं वो मारे जाते हैं पहले ही दिन। बहुत सारे बाकी योद्धा मारे जाते हैं पांडवों की तरफ से। तो शाम को जब लड़ाई ख़त्म हो जाती है तो पांडवों के कैंप में सारे योद्धा लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई अब आगे कैसे किया जाए, नहीं किया जाए। युधिष्ठिर हैं, युधिष्ठिर बहुत टेंशन में रहते हैं, क्योंकि पहले से ही उनके दिमाग में था कि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, ये लोग बड़े बड़े योद्धा सब कौरवों की तरफ से हैं, तो उनको डर था कि कहीं वो कमज़ोर ना दिखें। तब कृष्ण जी सजेस्ट करते हैं कि धृष्टद्युम्न को सेनापति बनाया जाए, क्योंकि अब कृष्ण जी तो उनको तो सब पता है और वो ये जानते भी थे कि धृष्टद्युम्न के जन्म का रीज़न ही सिर्फ द्रोणाचार्य को मारना है। और धृष्टद्युम्न भी कहीं ना कहीं इस बात को जानता था कि उसके जन्म होने के पीछे का कारण है कि उसको द्रोणाचार्य को मार के ख़त्म करना है। तो ये दूसरे दिन जो कमांडर इन चीफ या सेनापति बनते हैं वो आखिर तक सेनापति रहते हैं, मतलब 18वें दिन तक रहते हैं। और ये युद्ध की लड़ाई में ये मरते नहीं हैं, इसको इनको मारता है अश्वत्थामा बाद में, बट ये युद्ध में नहीं मरते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि धृष्टद्युम्न को पता था कि उसका जन्म जो है वो द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही हुआ है, तो ठीक उसी तरह द्रोणाचार्य को भी पता था कि धृष्टद्युम्न का जन्म जो है वो उनको मारने के लिए हुआ है। लेकिन बावजूद इसके धृष्टद्युम्न को वही ट्रेन करते हैं, वही पढ़ाई लिखाई वेपनरी सारी शिक्षा जो है वो उन्हीं के आश्रम में ही लेता है। जितने भी कहते हैं कि उस टाइम पे ब्रह्मास्त्र चलाना सीखना हो या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक अच्छे गुरु से ही सीख सकते हो, तो ये द्रोणाचार्य का आप कह लो बड़प्पन था कि ये जानते हुए कि ये उनके लिए मृत्यु बन के आया है, पैदा लिया है, लेकिन फिर भी वो उसको सब कुछ सिखा देते हैं। तो ये तो कहानी है कि युद्ध में धृष्टद्युम्न क्या थे नहीं थे। अब मैं महाभारत में एग्जैक्ट लड़ाई वाले दिन की बात आपको बताता हूँ कि ये 15वां दिन की बात है। उस दिन क्या होता है कि जो कौरव साइड से द्रोणाचार्य जो हैं वो पांडवों के साइड के बहुत सारे योद्धाओं को मार देते हैं और उनको रोकना मतलब ना के बराबर है, मतलब ऐसा मुश्किल है। अब पांडव लोगों को टेंशन होता है कि अगर द्रोणाचार्य को नहीं रोका गया तो वो लोग हार जाएंगे। तब कृष्ण क्या करते हैं कि ये काम करते हैं, द्रोणाचार्य जब तक खुद से हथियार नहीं छोड़ेंगे तब तक उनको हराना मुश्किल है, तो हम लोग एक झूठ का न्यूज़ फैला देते हैं जिसमें कि हम लोग बोलेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया, और ये सुन के वो ज़रूर अपना हथियार छोड़ देंगे। तो सबको टेंशन था कि भाई अगर वो युधिष्ठिर से पूछेंगे तो युधिष्ठिर तो ना नहीं बोलेंगे क्योंकि वो सच बोलते हैं। तो इसके लिए कृष्ण सॉल्यूशन देते हैं कि हम लोग अश्वत्थामा नाम का एक हाथी को मार देंगे और उसी का न्यूज़ हम लोग हल्ला करेंगे। तो अब यही होता है कि अब मार देते हैं लोग हाथी को और फिर हल्ला हो जाता है कि अश्वत्थामा मारा गया। अब ये न्यूज़ द्रोणाचार्य के पास भी पहुँचता है। अब द्रोणाचार्य सुन के उनको ये विश्वास नहीं होता, क्योंकि उनको पता था कि अश्वत्थामा को मारना इतना आसान नहीं है। तो वो ये चीज़ कन्फर्म करने के लिए युधिष्ठिर से पूछते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया है क्या। अब युधिष्ठिर जो है वो वहाँ पे बोलते हैं कि हाँ मारा गया है, और दूसरी लाइन जो है वो ये कहते हैं धीरे से कि शायद हाथी है। तो कृष्ण क्या करते हैं कि उस टाइम पे नगाड़ा बजाने वालों को और शंख फूकने वालों को वहाँ पे रेडी रखते हैं कि जैसे ही युधिष्ठिर के मुंह से हाँ निकल जाए उसके बाद ये लोग जोर से नगाड़ा और शंख बजाने लगे, ताकि दूसरा पार्ट जो है वो सुनाई ना दे। तो ठीक वैसे ही होता है, द्रोणाचार्य सिर्फ पहली लाइन सुनते हैं कि कि हाँ मारा गया है, लेकिन दूसरी लाइन वो नगाड़ाओं के आवाज़ में नहीं सुन पाते हैं। अब ये चीज़ सुन के वो क्या करते हैं कि वो अपना हथियार छोड़ देते हैं, रथ के नीचे आ जाते हैं ज़मीन पे, और वो मेडिटेट मोड में चले जाते हैं ये पता करने के लिए कि सच में उनका बेटा मरा है कि नहीं। तो मेडिटेशन मोड में उस टाइम पे क्या था कि ऋषि मुनि लोग शरीर छोड़ के आत्मा उनका निकल जाता था पता करने के लिए कुछ, तो खैर जो भी था कि वो इस मोड में चले गए थे कि एकदम शांत बैठ गए थे और वो पता करने के लिए गए थे मेंटली जो उस टाइम पे ऋषि मुनियों का पावर होता था कि सच में मरा है कि नहीं मरा है। अब धृष्टद्युम्न जो वहाँ पे रहता है वो देखता है कि द्रोणाचार्य बिना हथियार के ज़मीन पे बैठा हुआ है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आता है और उसका उनका गर्दन काट देता है, जिस तरह से द्रोणाचार्य मर जाते हैं 15वें दिन। अब उनके मरने के बाद फिर पांडवों में थोड़ा सा आता है कि हाँ अब हम लोग जीत सकते हैं, अब हम लोग जीत सकते हैं। लेकिन ये जिस तरीके से धृष्टद्युम्न मारता है ये अब देख के अश्वत्थामा को गुस्सा आ जाता है और वो बहुत कोशिश भी करता है मारने का, लेकिन वो नहीं मार पाता है धृष्टद्युम्न को। और इस तरह से फिर जो लड़ाई है 18वें दिन तक, जो आखिरी दिन है महाभारत का, वो उस दिन तक पहुँचता है। और कहते हैं कि जब लड़ाई ख़त्म हो जाती है, ज़्यादातर लोग मर चुके होते हैं, बहुत कम लोग बचते हैं, उसमें अश्वत्थामा भी होता है, तो अश्वत्थामा रात में क्या देखता है कि उल्लू जो है वो एक कौए के घोंसले को जाके वो तोड़ देते हैं और वो मार देता है उसके बच्चों को। अब उसको ये चीज़ दिमाग में आ जाता है कि ये चूँकि रात में देख सकता है तो ये उसका फ़ायदा उठा के उनको मार देता है, तो क्यों ना मैं जाके इसी तरीके से रात का फ़ायदा उठा के मैं भी इसको मारूं धृष्टद्युम्न को, क्योंकि उसने मेरे पिता को उसी हालत में मारा था जबकि वो मेडिटेट कर रहे थे, मतलब वो सब कुछ छोड़ के आँख बंद करके थे, उसी हालत में उसने मारा था मेरे पिताजी को, तो मैं भी उसे मार सकता हूँ और ये जस्टिफाइड है। तो इससे पहले वो क्या करता है, शंकर भगवान का एक पूजा करता है और जहाँ पर वो कहते हैं कि अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है, जिससे खुश होके शंकर भगवान आते हैं और उसको वरदान देते हैं कि भाई क्या चाहिए बताओ। तो कहता है कि मैं आज जो है हारना नहीं चाहता हूँ और आज मुझे विजयी होना है, तो शंकर भगवान उसको तथास्तु बोल के फिर चले जाते हैं। और कहते हैं कि रात में ही ये जाके फिर वो जो कैंप में जहाँ पे पांडवों के बच्चे सो रहे होते हैं, जहाँ पे ये धृष्टद्युम्न रहता है, ये कैंप में घुसता है और इसको कोई नहीं रोक पाता, और उस दिन वो रात में बहुत सारे लोगों को वो भी मार देता है, इनके बच्चों को मार देता है और धृष्टद्युम्न को ये हाथों से मारता है। धृष्टद्युम्न एक टाइम पे उसको कहता है कि मैं योद्धा हूँ, एक काम करो, कुछ नहीं तो कम से कम मुझे एक योद्धा की मौत दे दो तलवार से, लेकिन वो सुनता नहीं है और उसको हाथ से ही उसको वो घूसो लातों से वैसा करके ये मार देता है। तो ये थी धृष्टद्युम्न की कहानी, जहाँ पे कि वो उनका जन्म कैसे होता है और उसकी मृत्यु कैसे होती है ये आपने सुना। अब एक वर्जन है जहाँ पे कि कहा गया है कि जो एकलव्य है, एकलव्य का दूसरा जन्म जो है वो है धृष्टद्युम्न के रूप में। कहते हैं कि स्टार्टिंग में जब जरासंध जो है वो मथुरा पे अटैक कर रहा था बहुत बार, तो उस अटैक में जरासंध के जो एक सेक्शन के जो लीडर थे वो थे एकलव्य के फादर। अब एकलव्य के फादर चूंकि जरासंध की साइड से लड़ रहे थे तो एकलव्य भी उनकी तरफ से ही अपने राजा के लिए लड़ता था, तो उसमें जब लड़ाई हो रहा था तो एक इंस्टेंस है जहाँ पे कि एकलव्य जो है वो कृष्ण के जो बेटे हैं जिनका नाम सिम्बा है उसको मारने के लिए ये जाता है, तब कृष्ण उसको मारते हैं और साथ में ये वरदान भी देते हैं कि तुम्हारा जो अगला जन्म होगा उसमें तुम द्रोणाचार्य से बदला ले सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी धृष्टद्युम्न से रिलेटेड, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पेज पे या यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक के पेज पे ज़रूर भेजें, और एक दूसरे की मदद करते रहें, इंसानियत को जगाए रखें, और हमेशा की तरह कहना चाहूँगा कि मेरा मकसद आप लोगों तक अनसुनी और रोचक कहानियाँ लाने तक का है, बिना किसी रिलीजियस बिलीफ को चोट पहुँचाए हुए। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए किरदार के साथ, कुछ अनसुनी और रोचक कहानियों के साथ में। तब तक के लिए सुनते रहिए, कुछ सुनाओ यार, ओनली विद अमित रवानी।